शांति। अब फिर हम इस भट्टी में एक बहुत सुंदर विषय जो गुण और शक्ति दोनों रूपों से हमारी उन्नति में सहायक है, तो अभी की क्लास का विषय है संतुष्टता एवं प्रसन्नता। और इस क्लास के लिए आदरणीय डॉक्टर सविता बहन हमारे बीच है। सविता बहन का इस योग भट्टी में आए हुए होली हंसों की सभा में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबा के इन ज्ञानी योगी बच्चों से एक ही बार मिलने का मौका होता है, इसलिए उनका थोड़ा सा सूक्ष्म में परिचय। आप डॉक्टर सविता बहन, शुरू से डबल डॉक्टर के रूप में आपने सेवा की, फिर आदरणीय दादी जी प्रकाशमणि दादी जी की प्रेरणा से आप संपूर्ण समर्पण होकर दादी जी के अंग संग रहते, दादियों के विशेष रथ की सेवा भी करते रहे और साथ साथ में ज्ञान योग के अभ्यास से अपनी स्थिति को भी पावरफुल बनाते रहे। और अब आप विशेष ईश्वरीय पढ़ाई का अध्ययन कराने के निमित्त, ज्ञान की पॉइंट्स को क्लियर करने के निमित्त क्लासेस, योग शिविर आदि सभी में अपना एक्टिव पार्ट बजा रहे हैं। और विशेष जो महिला विंग है उसके आप मधुबन कोऑर्डिनेटर है, उसमें भी बहुत सेवा करते हैं। आप ऑलराउंडर है और यज्ञ के रक्षक कहे वफादार ईमानदार बनकर यज्ञ सेवा में मधुबन निवासी बनकर उपस्थित है। तो डॉक्टर सविता बहन, अब हमें संतुष्टता और प्रसन्नता इस विषय पर मार्गदर्शन देंगे।
ओम शांति, ओम शांति। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो आध्यात्मिक जीवन की विशेषता ही संतुष्टता मानी जाती है। संतुष्टता के लिए बाबा भी कहते हैं संतुष्टता ब्राह्मणों की विशेषता है। ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है। तो कितना हमने अपनी इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। जैसे भक्ति में भी जो भक्त हुए या संत हुए, जैसे संत कबीर ने कहा गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। यानी संतोष धन सबसे बड़ा धन है और वो धन होने पर और कितने भी धन हैं हमारे लिए उसका महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर सब धन है, संपत्ति है, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो वो सब होते हुए भी जैसे हम महसूस करते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट है तो और चाहिए और चाहिए, ये भाव रहता है। और यहाँ ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का आधार बाबा कहता है सर्व प्राप्ति है। असंतुष्टता का बीज अप्राप्ति होता है। कोई भी चीज की कमी है जीवन में तब हम असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। तो इसका मतलब सब कुछ प्राप्त है, दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, स्थूल और सूक्ष्म, है ना। स्थूल प्राप्तियों में संबंध, स्वास्थ्य, संपत्ति, ऐसा कहेंगे। और सूक्ष्म प्राप्तियों में व्यक्ति को क्या चाहिए? नाम, मान और शान, ये अच्छा होना चाहिए, ये एक चाह होती है इंसान की। तो ये सब प्राप्तियां हैं हमको ब्राह्मण जीवन में। और बाबा ने कहा कि सबको भगवान के द्वारा सब कुछ प्राप्त है, एक ही समय, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, कोई कमी नहीं है। जिस खड़ी ब्राह्मण जन्म हुआ सबको ये प्राप्ति हुई है। लेकिन फिर भी सभी ब्राह्मण संपूर्ण संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट है और कोई कभी कभी किसी कारण से असंतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, थोड़ा असंतुष्टता की छाया आती है, फिर उस छाया से निकल करके फिर आ जाते हैं बाहर। क्योंकि बाबा से जो ज्ञान का खजाना मिलता है, जब वो स्मृति आती है तो स्मृति स्वरूप होते ही फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक है सदा संतुष्ट, तो उनकी झलक और फलक। और बाबा कहता है जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट, उनकी झलक और फलक, अंतर होगा या नहीं होगा? जो सदा संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न भी होंगे। संतुष्टता और प्रसन्नता का संबंध है, कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह से हैं। तो संतुष्टता का आधार संगम युग पर बेहद की प्राप्तियां हैं। बेहद की प्राप्तियां इतनी हैं कि हम तो क्या, बाबा कहता है आपकी वंशावली और आपके भक्त और भक्तों की वंशावली भी उन प्राप्तियों के आधार पर चल सकते हैं। और प्राप्तियां भी एक जन्म की नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर की। 21 जन्म तो गारंटी है बाबा की, लेकिन उसके आगे भी वो प्राप्तियां हमारी चलती हैं। लगभग पूरा कल्प हम प्राप्ति संपन्न रहते हैं, पर विस्मृति में आ जाते हैं। प्राप्तियां बेहद की हैं, लेकिन दिमाग में स्मृति रहती है कभी, और कभी भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं तब असंतुष्ट होते हैं। और कई बार हम बेहद को हद में ले आते हैं। हद की प्राप्तियां हम सब जानते हैं, हद की जो प्राप्तियां हम करना चाहते हैं वो इस संसार की छोटी छोटी भौतिक प्राप्तियां। तो अगर हम हद में आ जाते हैं तो भी हम असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि बाबा के द्वारा जो प्राप्त होने वाली प्राप्तियां हैं वो बेहद हैं। तो अगर बेहद के स्मृति स्वरूप हैं तो ही सदा संतुष्ट हम रह सकते हैं। और जो संतुष्ट हैं वो स्वयं से, सर्व से, बाबा से, ड्रामा से, सभी से संतुष्ट होंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे। असंतुष्ट किससे होते हैं? सर्व से जब संबंध में हम आते हैं तब हिसाब किताब की ही बात हमें असंतुष्ट करती है। कई तरह के हिसाब किताब हो सकते हैं, मानो उस आत्मा से मेरे संस्कार नहीं मिलते हैं, मेरे विचार नहीं मिलते हैं, है ना। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, इसको मेरे जैसा ही सोचना चाहिए, जैसा हम समझते हैं वो राइट है, तो हम उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमसे नहीं कर रहा है, या कोई मेरी इंसल्ट कर देता है, कोई कारण नहीं है लेकिन ईर्ष्यावश हो सकता है, द्वेषवश हो सकता है, या उनको हमारी कोई कमी दिखती होगी जो हमें नहीं पता लेकिन दूसरे हमारी वो कमी देखते हैं, तो सूक्ष्म घृणा भाव, उसकी वजह से कोई हमारी इंसल्ट करता है मानो, ये हिसाब किताब के रूप में जब हम आत्माओं के संबंध में आते हैं तब आता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी हम संतुष्ट रह सकते हैं? तभी हम कहेंगे कि संतुष्टता का गुण है हमारे अंदर, क्योंकि ये परिस्थितियां संगठन में पैदा होने ही वाली हैं। जब भी हम संबंध संपर्क में आएंगे, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, दोनों ही परिवार में, तो फिर भी उस आत्मा से मैं संतुष्ट रहूं संभव है या नहीं है? पूछते हैं आपसे, क्योंकि सदा की संतुष्टता तो तभी है जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हो तो भी हम संतुष्ट रहें। तो कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, आप भी कुछ रूढ़ियान करेंगे। वैसे तो हम संतुष्ट ही हैं, लेकिन असंतुष्ट कब होते हैं? जब ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है, तो फिर उसमें भी संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? हाँ जी, ड्रामा का ज्ञान स्मृति में लाएं। अच्छा, और साक्षी होकर हरेक आत्मा के पार्ट को देखना है। और हाँ जी, हाँ, अकाउंट का सेटलमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब मिल रहे हैं। तो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तो हमें केवल वर्तमान काल को नहीं देखना है। जब हम तीनों कालों के ज्ञाता बनकर के उस परिस्थिति को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, पहली बात तो आत्मा परवश है, माया के वश है, और अगर उसका अभी तमो प्रधानता का पार्ट है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है उस समय? मेरा कर्तव्य है उसको सहयोग देना, उस पर रहम करना। दूसरा, मेरा कोई हिसाब किताब था किसी जन्म का, हमें सारे हिसाब किताब अभी चुकतू करने हैं, ये हमारा अंतिम जन्म है, तभी हम कर्मातीत बनेंगे। तो जो हिसाब किताब था वो मेरा चुकतू हो गया, उसने मेरे से कैसा भी व्यवहार किया लेकिन मेरा खाता क्लियर हुआ। कर्ज चुकतू होता है तो हम हल्के हो जाते हैं। या फिर पेपर है, मुझे पास करना है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पेपर भी तो हमें देने हैं, तो कोई ना कोई आत्मा ही निमित्त बनेगी जो मेरा टेस्ट पेपर लेगी। स्वयं शिव बाबा आकर के पेपर लेंगे हमारा। जहां हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस सेंटर पर रहते हैं, वहां से ही हमारा पेपर होने वाला है। तो अगर हमें ये ज्ञान समझ है, मतलब हम उसे यूज करते हैं, है हम सभी को, लेकिन समय पर स्मृति में आ जाए, तो फिर हम उस आत्मा के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होते, बल्कि उसके प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रख पाते हैं। वो हमारा उसके प्रति सहयोग होता है कि वो कैसा भी व्यवहार कर रही है, लेकिन हम फिर भी उनसे श्रेष्ठ व्यवहार ही कर रहे हैं, उनके प्रति शुभ भावना ही रख रहे हैं। फिर मानो मेरे शरीर का कर्म भोग है, वो सामना करने आता है, तन की बीमारी भी असंतुष्ट करती है, और संगम युग में कोई ना कोई तन की बीमारी होती ही है, क्योंकि तन के हिसाब किताब जो प्रकृति के हमारे हिसाब किताब है वो भी हमें यहीं चुकतू करने हैं। तो बाबा कहता है कि तन भले अस्वस्थ हो जाए लेकिन आत्मा तो तंदुरुस्त है, आत्मा तो स्वस्थ है, और अगर आत्मा स्वस्थ है तो फिर ये तन का हिसाब किताब भी सूली से कांटा बन जाता है, इसको भी हम सहज चुकतू कर पाते हैं। तन का हिसाब किताब मेरे मन को प्रभावित नहीं करता, मन दुखी नहीं होता, और अगर मन प्रसन्न है, मन खुश है, तो खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, ऐसे कहते हैं। तो अगर हम खुश हैं तो वो खुशी ही हमारी दवाई बन जाती है, और इसीलिए ब्राह्मण कर्म भोग को कर्म योग से सहज चुक्त करते हैं। बाबा ये नहीं कहता दवाई मत लो, केवल उसको कर्म योग में बदल दो। लेकिन अगर हमें डॉक्टर दवाई देता है, चेकअप भी अपना पूरा कराना है, हमें दवाई भी लेनी है, डॉक्टर्स का रोल अपना है, क्योंकि प्रकृति के साथ जो प्रकृति के तत्वों की तमो प्रधानता है और उसके कारण जो बीमारी पैदा हुई है या पूर्व जन्मों के हमारे हिसाब किताब के कारण जो बीमारी पैदा हुई है, उसके लिए हमें फिजिकल लेवल पर भी कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो पूर्ति भी हमें करनी है। लेकिन साथ साथ अगर मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में हूं, एक है सोल कॉन्शियस और दूसरा है बीमारी कॉन्शियस, रोग कॉन्शियस। तो बीमारी कॉन्शियसनेस माना बार बार अपनी बीमारी को सोचना, मुझे ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था, अब क्या होगा, कई बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, कई तरह के वेज थॉट्स मन में चलाने लगते बीमारी को लेकर के। फिर अगर खुद के मन में वो वेज थॉट्स चलते हैं तो वर्णन किए बिना रह नहीं सकेंगे, मुझे ये हो गया वो हो गया, और जितना हमने बीमारी को सोचा और वर्णन किया, हम क्या कर रहे हैं, उसे और बढ़ाने लगते हैं, वो असंतुष्टता लाती है। लेकिन बीमारी हुई, हमने बाबा को याद किया, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहे और फिर भी सोचा कि ठीक है जो हुआ है सब ठीक हो जाने वाला है, हर चीज को में थोड़ा वक्त लगता है, और बाबा से हम सकाश अपने शरीर के उस अंग को देते हैं, वो सब हमने सीखा हुआ है, कैसे हमें शरीर के अलग अलग अंग को गुण के हिसाब से सकाश देनी है, सबको मालूम है ना, खासकर डॉक्टर गुप्ता जी बहुत इस बारे में विस्तार से बताते हैं। तो हम जो भी अंग हमारा रोगी है उसे अगर हम बाबा से सकाश देते हैं, और वो दुआएं हमें जो मिलती हैं, दवा और दुआ दोनों मिलकर के वो बीमारी से हमें जल्दी स्वस्थ कर देते हैं। फिर आज 70% बीमारियां टेंशन के कारण है, लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। ब्राह्मणों की लाइफस्टाइल बेस्ट लाइफस्टाइल है, हम तो अमृत वेले से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है, तो हमको पर्याप्त समय मिलता है, योग से मन स्वस्थ शुद्ध निर्मल हुआ, फिर उसके बाद तन के लिए भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हमारे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता है तो वो भी हम करें, आधा घंटा हमें वॉक करना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए, लाइफस्टाइल में ही आता है। फिर कोई भी हमारे मन में जो नकारात्मक भाव है वो बीमारी का कारण होते हैं, ये कहते हैं टेंशन 70% बीमारियां पैदा करता है, तो टेंशन माना नेगेटिव फीलिंग्स, कोई भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स हम किसी के प्रति कैरी कर रहे हैं वही टेंशन पैदा करता है, या कोई अचानक हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है तो हमारे लिए तो बाबा बोझ उठाने वाला बैठा है, करण करामनहार कौन है, बाबा है, तो हमें बोझ उठाना है किसी बात का, कोई भी बात है बाबा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बाबा आप जानो, मैं निमित्त हूँ, आपको करवाना है, आप करवा रहे हैं, तो मन हल्का उस बोझ से उस प्रेशर से मुक्त हो जाएगा। तो जो टेंशन के कारण होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी हम सहज मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि बेफिकर बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, ये बाबा हमें टाइटल देते हैं, और सचमुच हम रह सकते हैं अगर हम ज्ञान की स्मृतियों का समय पर प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ सुनने तक नहीं, मुरली सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, फिर गए अपने काम में तो भूल गए बाबा ने क्या कहा, फिर मेरे वही पुराने संस्कार ही काम कर रहे हैं, तो फिर पुराने संस्कार इमर्ज होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन भी होगा, कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर भी होगा। लेकिन अगर मेरे ईश्वरीय संस्कार मुझे सदा स्मृति में रहते हैं, जो शांति के प्रेम के सुख के संस्कार हैं, तो कभी भी मुझे टेंशन हो नहीं सकता। तो इस तरह से आत्मा तंदुरुस्त तो तन की तंदुरुस्ती भी सहज हम अनुभव करते हैं, और अगर हो भी गया है मानो कोई रोग, तो रोग कॉन्शियस नहीं रहना है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन भर जिसके साथ जीना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, ब्राह्मणों को भी हो जाती है, क्योंकि पूर्व में अब हम कितने वर्षों से ज्ञान में आए हैं वो अलग बात है, सभी तो बचपन से ज्ञान में नहीं आ जाते हैं, तो कुछ प्रभाव हमारे पर पहले से पड़ चुके हैं, और नहीं तो ब्राह्मण जीवन में आने के बाद भी हम पूरी तरह से स्मृति स्वरूप बने उसमें भी हमें समय लगता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो हमारे स्वास्थ्य पर आ चुका है मानो, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा है उसे सही करके हम वो बीमारी को भी मेंटेन करते हैं। और हमने देखा हमारी दादियां हुए, उनको ये बीमारियां हुई हैं लेकिन पूरी आयु उन्होंने जिया है, अभी तक भी हमारी दादियां कितने एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे हमारे रतन मोहिनी दादी जी हैं, जानकी दादी जी हैं, हम देखते हैं स्वास्थ्य की कोई ना कोई चैलेंजेस कभी ना कभी उनके सामने भी आते हैं, लेकिन बहुत सहज रीति से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उस रीति से वो उसे पार करते हैं। तो विल पावर अपना जो मन की शक्ति है, अगर मन शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है, तो तन के संबंध में हम कभी भी असंतुष्ट फिर नहीं होंगे। और जहां तक संबंधों की बात आती है तो बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव बच्चों को मेरे साथ करना है। दुनिया में तो जो संबंध हैं वो आज हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं, वो अविनाशी नहीं होते हैं, लेकिन जो बाबा का संबंध है वो अविनाशी प्राप्ति कराने वाला संबंध है। दुनियावी संबंधों में जो आत्मा मुझे आज सुख दे रही है वो कल मुझे दुख भी दे सकती है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही हो सकता है। ज्ञानी हमें ज्यादा दुख नहीं देंगे, लेकिन हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, जहां भी जॉब में रहते हैं, सभी प्रकार की आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं। कोई हमें आज प्रेम करता है, कल वो हमें नफरत भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की मनस्थिति परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन शिव बाबा तो सदा ही प्रेम का सागर है, वो सदा ही दाता है, वो सदा ही सुख देने वाला है, और इसीलिए संगम युग पर हमारे लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये हमारा आधार होना चाहिए। बाबा ही मेरा संसार है। और मानो कोई संबंध की कमी है दुनिया में, किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, किसी को माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, जो बहुत समीप के संबंध होते हैं, अगर उस संबंध में कोई कमी है तो वो बहुत फील करते हैं कि मेरी माँ नहीं है, देखो मेरी माँ होती तो कितना हम सुखी होते, कितना हमें प्रेम मिलता, माँ से हम दिल की बात कर पाते, हो जाता है। लेकिन हमारे को भले ही लौकिक में कोई संबंध की कमी हो, लेकिन फिर भी हम फील करेंगे, हम बाबा के बच्चे फील करेंगे उसको, क्योंकि बाबा सर्व संबंधों से हमें बिल्कुल साकार जैसा अनुभव कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अनुभव नहीं कराता बाबा, लेकिन हम समय पर उस संबंध का अनुभव करें। कई भाई बहने सोचते हैं शिव बाबा तो निराकार है ना, अब निराकार है, आकार है, और जब हमें साकार में आवश्यकता है बाबा हाजिर हो जाए, कोई जरूरी नहीं है तो कोई एक ना एक कंपनी, एक ना एक साथी, एक ना एक कंपेनियन तो हमारा होना ही चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। केवल बाबा से संतुष्ट नहीं होते हैं, जीवन में कोई ना कोई एक साकार में भी कंपनी और कंपेनियन तो चाहिए, तो ऐसे बाबा मना नहीं करते हैं। हमारा ब्राह्मण परिवार तो कितना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी कंपनी में रहते हैं हम, ऐसा कहेंगे, वो कोई कमी नहीं दी है बाबा ने। लेकिन फिर भी जीवन का आधार एक बाबा ही होना चाहिए। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा में जाएंगे तो फिर वो लगाव चुकाव में हिसाब किताब बन जाएगा हमारा। तो वो हम कर्म का हिसाब किताब अभी चुकतू कर रहे हैं, अभी हमें अपना हिसाब किताब बनाना नहीं है, क्योंकि आत्मा की आत्मा से लेन देन ये हिसाब किताब बन जाता है। और फिर बाबा से हमारा योग टूटता है, और जब बाबा से योग टूटता है तो जो बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा को मिलनी चाहिए उन शक्तियों से हम वंचित होने लगते हैं, उस सुख से हम फिर वंचित होने लगते हैं। और फिर जो सूक्ष्म प्राप्तियों की बात है, मानो नाम मान शान की बात है, तो एक तो है भौतिक रूप से नाम मान शान दुनिया में, तो उसके लिए तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो होती हैं उन्हें वो स्वतः ही प्राप्त होता है, है ना? उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कुछ ऐसे पुरुषार्थ किए हैं जिससे वो नाम मान शान की प्राप्ति होती है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में जो नाम मान शान है वो सूक्ष्म रीति से हम अनुभव करते हैं, है सभी को नाम की प्राप्ति, मेरा कुछ नाम तो होना चाहिए, किसी भी सेवा में मेरा नाम तो आना चाहिए ऐसा सोचते हैं, या टीचर जो है वो मेरा नाम किसी में भी नहीं लेती है, सेवा तो हम इतनी करते हैं लेकिन नाम तो किसी और का हो जाता है, हमारा नाम तो होता ही नहीं है। असंतुष्ट कैसे होते हैं हम जब नाम की प्राप्ति नहीं होती या हमारा नाम नहीं लिया जाता। तो बाबा कई बार हमें कहते हैं कि मानो आपका नाम आना चाहिए, आप समझते हैं कि आपने किया है और आपका नाम आना चाहिए, पर किसी आत्मा से मेरा हिसाब किताब है और उसके कारण मेरा नाम नहीं आता है ना? वो जानबूझ करके भी कई बार ऐसा कर सकते हैं कि हमें हमारी उपेक्षा कर सकते हैं, वो हमें अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर नहीं आया तो बाबा के पास हमारा रिकॉर्ड है और बाबा के दिल पर हमारा नाम पहले आएगा। ये बाबा ने एक मुरली में बहुत स्पष्ट कहा था कि बाबा की विजय माला में आपका नाम पहले आएगा, और हमारा नाम भगवान के दिल पर है और हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बने ना, ब्राह्मण कुलभूषण है। तो आज भी ब्राह्मणों का नाम कितना ऊंचा है कि जो नामधारी ब्राह्मण है इस दुनिया में, जो सच्चे ब्राह्मण नहीं है, वो भी ब्राह्मण होने से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण नाम है उससे ही उनका जीवन निर्वाह होता है, उससे ही उनको कितनी प्राप्ति होती है। तो हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं, तो नाम से तो ऊंचे वैसे ही हैं। सभी ब्राह्मण हैं कि नहीं? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली सब कौन बैठे हैं? हम सभी ब्राह्मण बैठे हैं, तो वो नाम तो हम सभी को मिला हुआ ही है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। और फिर मान की बात, तो बाबा ने जो हमें स्वमान दिया है, दुनिया में कितने भी बड़े से बड़े वीआईपी क्यों ना हो, ऐसे टाइटल किसी के भी नहीं हो सकते, हो सकते हैं किसी के भी टाइटल, और इतने नहीं हो सकते। चलो होंगे उनके 8, 10, 20 टाइटल होंगे, लेकिन हमारे तो टाइटल इतने दिए हैं बाबा ने कि गिनती नहीं कर सकते। कर सकते हैं गिनती? अभी आपसे गिनती कराएंगे तो कौन कौन है हम, मैं कौन सी आत्मा हूँ, केवल आत्मा नहीं हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, भगवान के चुने हुए हम रत्न हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व के आधार मूरत हैं, उद्धार मूरत हैं, बाबा ने हमें मस्तक मणि बनाया है, बाबा के गले का हार है, फिर भविष्य में पूज्य बनने वाली देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, कहेंगे कितने टाइटल हैं। तो जो मान बाबा ने हमें दिया है वो दुनिया में कोई भी किसी को नहीं दे सकता। और बाबा कहते हैं मैं आप बच्चों को डबल पूज्य बनाता हूँ, सिंगल पूज्य भी नहीं, मेरी पूजा सिर्फ निराकार रूप में होती है, आप बच्चों की साकार रूप में और निराकार रूप दोनों में पूजा होती है। और जो भी देवी देवताओं के चित्र हैं उनको कितना प्यार से, कितना सम्मान से भक्त पूछते हैं। किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाओ आप, और चलो बहुत प्रसिद्ध देवताओं की बात छोड़ो, जो सबके कुल देवता होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं कौन है, किनका गायन है वो, जो कुल देवताएं हैं उनको मिलाकर ही तो 33 करोड़ देवी देवता होंगे। तो हरेक कुल अपने उस देवता की भी कितनी सम्मान से, कितनी विधि पूर्वक पूजा करता है। तो सभी देवी देवता बनने वाली आत्माएं बैठी है ना यहाँ पर, या कोई बनेंगे कोई नहीं बनेंगे, क्या कहेंगे। तो कितना सम्मान से चित्रों की भी पूजा हो रही है। तो चैतन्य में तो हैं, तभी तो हो रही है, चैतन्य में वो हम बने हैं, तो इतना निश्चय हमें अपने आप पर भी होना चाहिए। और जहाँ निश्चय है सभी बातों में, स्वयं पर निश्चय है, अपने परिवार में निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, 100% निश्चय। ऐसे नहीं परसेंटेज में निश्चय हो, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, इन बातों में है इन बातों में नहीं है, बाबा में तो है लेकिन परिवार में नहीं है, तो फिर संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर संपूर्ण निश्चय है तो संतुष्टता है ही है। हमने सब राजों को समझा, माना हम नाराज नहीं हो सकते, राज को जानने वाले राज ही रहते हैं, ये बाबा कहते हैं। तो सब राज समझा दिए, माना भगवान ने सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। तो सब राज समझने से हर आत्मा के राज को जानते हैं, अपने स्वयं के राज को जानते हैं, ड्रामा के राज को जानते हैं। शिव बाबा ने भी अपने बारे में सब राज स्पष्ट कर दिए, तो राजी रह सकते नहीं रह सकते, तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कहा भौतिक प्राप्तियों की, हद की प्राप्तियों की इच्छा में हम चले जाते हैं। एक मकान होना चाहिए अच्छा सा, एक कार होनी चाहिए, कार तो जरूरत है आज के जमाने की। तो बाबा ने एक मूल्य में कहा था, कार तो क्या, आपको कारों का खजाना मिल गया है। तो जिसको कारों का खजाना मिल गया उसके आगे कार क्या है ना, क्योंकि हम उसके खुशी और नशे में नहीं रहते जो हमें प्राप्ति हुई है। प्राप्तियों को हम एक तरफ कर देते हैं, जो अप्राप्ति है उसको हम सोचते रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, अल्पकाल की प्राप्ति अगर है, बाबा कहते हैं तो खुशी से यूज करो। और मैं समझती हूँ आजकल कोई भी ब्राह्मण जो ये समझता है कि कार मेरी आवश्यकता है और उसके पास कार ना हो, ऐसा है, ऐसा है क्या? लगभग सभी को भगवान तो इस जीवन में ही सभी की आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। संकल्प उठना चाहिए बस। जो धन की प्राप्ति है ना, कई बार वो भी असंतुष्टि पैदा करती है कि जितना धन हमें चाहिए उतना धन हमारे पास नहीं है। तो बाबा कहता है आपका धन अविनाशी धन है, आपका धन जो बाबा से प्राप्त हुए सर्व खजाने हैं, जो ज्ञान का खजाना है, जो गुणों का खजाना है, जो शक्तियों का खजाना है, ये हमारा धन है। और ज्ञान धन स्थूल धन को स्वतः लाता है। अगर वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, जो बहुत अधिक हाईली क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए धन कमाना मुश्किल नहीं होता है। तो धन कैसे कमा रहे हैं वो, अपने विद्या बल से, जो उन्होंने उच्च विद्या प्राप्त की है उसके आधार पर धन कमाना सहज है। तो ये ज्ञान तो उस ज्ञान से भी ऊंचा है। और अगर वो ज्ञान धन हमारे पास है तो प्रकृति अपने आप दासी होती है। प्रकृति दासी का मतलब जो साधन हमारी आवश्यकताएं हैं वो स्वतः पूरी होंगी, लोभ वाली नहीं। अब एक कार की बजाय आप कहोगे कि मेरे पास दो कार हो जाए, फिर तीन कार हो जाए, जैसे विदेश में होता है, होता है ना, हर एक के पास अपनी अपनी कार होती है। तो यहां भी फिर हम थोड़ा सा चाहिए चाहिए कि हमारी लिस्ट अगर बढ़ती जाती है तो तो बाबा कहते हैं फिर हद की इच्छाएं वो परछाई के समान होती हैं। परछाई कभी पकड़ में आती है? आती है? नहीं आती। लेकिन अगर हम सूरज के सामने मुंह कर देते हैं तो फिर परछाई अपने आप पीछे पीछे आने लगती है। तो हमेशा ज्ञान सूर्य की स्मृति में हम हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हमारा योग बल है, तो हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी होंगी और अधिक की इच्छा हमें होगी ही नहीं। बाबा हमेशा कहता है तो यूज करो, लेकिन ट्रस्टी भाव से, निमित्त भाव से। साधन मेरी साधना को भंग ना करे। ऐसा नहीं कि वो मेरी स्थिति से ही मुझे गिरा देवे। आजकल ऐसा होता है कि हम साधनों के इतने लगाव में आ जाते हैं। आपस में मनुष्यों के लगाव में इतना नहीं जाते अब, लेकिन ज्यादा लगाव किससे हो गया? मोबाइल नहीं छोड़ सकते, मोबाइल के बिना तो जिंदगी ही नहीं। 2 घंटा नेट क्या बंद हो जाए, क्या हालत हो जाती है। तो इतना ज्यादा लगाव कि वो मेरी स्थिति को गिरा दे, वो नहीं होना चाहिए। भक्त भी ऐसे हुए हैं, भक्ति मार्ग में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणा देती हैं। जैसे भक्त रविदास का नाम सुना होगा आपने, बहुत गरीब थे, जूते सिलाई का काम करते थे, मूछी का काम करते थे वो, लेकिन भगवान के बहुत सच्चे भक्त, परम भक्त थे। तो वो रोज का रोज कमाते थे और रोज खाते थे, माना उनके पास दूसरे दिन तक के लिए भी कुछ जमा नहीं होता था। तो एक उनके मित्र संत उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने रविदास की हालत देखी तो उनको लगा कभी भी इन पर मुश्किल आ सकती है। ये तो जरूरी थोड़ी है कि रोज इतनी कमाई हो कि अपना खर्चा चल जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतनी कमाई ना हो तो इनको तो भूखा रहना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको राय दी कि देखो तुम कुछ रखो अपने पास, तो अगर अभी नहीं है तो मैं तुमको देता हूँ। तो उनके पास कुछ रतन थे तो वो उन्होंने उसको दिए, कहा इनको बेच करके तुम धन कमा सकते हो। तो रविदास ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपने भगवान पर पूरा निश्चय है, वो मेरी पूरी संभाल करते हैं। कोई दिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मुझे भरपेट भोजन न मिला हो, मुझे सहज भोजन मिल जाता है और उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, भगवान की जो ये कृपा है मेरे ऊपर। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुमको मालूम नहीं है, तुमको रखना चाहिए, मैं तुमको कहता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो देखो तुमको जहां लगता है वहां रख दो। तो वो थी एक क्या बोलते हैं, शेल्फ बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, आला जैसे था, वहां पर उन्होंने वो रतन रख दिए। उन्होंने कहा जब भी तुमको जरूरत हो इसमें से तुम यूज करना, ये मैंने तुमको दिए हैं। तो उसने कहा ठीक है, वो चले गए, पर उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने छुआ भी नहीं, जैसे रखे थे वैसे के वैसे ही वो उसमें पड़े रहे। और 5-6 महीने के बाद वो संत फिर उधर आए, हाँ देखें रविदास का क्या हाल है, अगर उसने वो रतन बेचे होंगे तो अभी तो उसने अच्छा अपना घर बना लिया होगा, झोपड़ी में नहीं रहता होगा, इतना धन उसको जरूर मिल गया होगा। तो देखा वही की वही झोपड़ी और वही का वही सब कुछ। फिर देखा जो रत्न मैंने रखे थे वो बिल्कुल एक रत्न इधर से इधर हिला नहीं, वैसे के वैसे कि उसने उठा के भी नहीं देखा उसको कि ये रत्न कैसे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा रविदास तुमने एक रत्न भी इसमें से नहीं लिया, मैंने तुमको बोला था बेचकर इससे धन ले लेना और जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं वो पूरी करना। उसने कहा नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं जो मेरे को भगवान ने दिया है उसमें बहुत संतुष्ट हूं और खुश हूं। तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं और भगवान ने उनकी भावना को सदा ही पूरा किया है। बाबा कहते हैं मैं भक्तों की भी भावना पूरी करता हूं, तो आप तो बच्चे हो, डायरेक्ट संबंध वाले हो, इतने समीप संबंध वाले हैं, तो क्या बाबा हमारी भावना पूरी नहीं करेंगे? बाबा भी हमें वो सब अनुभव कराते हैं। और मैं समझती हूँ यहाँ आप सब जो भाई बहने बैठे हैं सबका अनुभव होगा। क्या किसी की कोई आवश्यकता रहती है? कभी कई बार ऐसे होता है अभी संकल्प भी नहीं उठेगा उसके पहले वो चीज हमारे सामने हाजिर हो जाती है, वो चीज या वो व्यक्ति भी कई बार इवन मधुबन में भी जब लोग पहली बार आते हैं तो बिल्कुल मिरेकुलस अनुभव करते हैं कि जैसे जादू नगरी है, सोचते नहीं है, उसके पहले ही हमें मिल जाता है। कोई खाने की भी चीज अगर मन में आ गई कि आज ये खाने की इच्छा हो रही है, पता चलता है किचन में जाते हैं वही बना हुआ है। क्योंकि ये मेरा भी अनुभव है, मैं जब पहली बार मधुबन में आई थी तो मैं कॉलेज से आई थी और दो ही दिन के लिए आई थी उस समय। तो ऐसे ही कुछ कारण से हम दो फ्रेंड्स थे तो कुछ कारण से मेरे मन में ऐसे पकोड़े की बात आई तो मैंने सोचा कि अरे अब यहाँ कहाँ पकोड़ा होगा, ऐसे मैंने सोच भी लिया कि मैं ऐसे सोच रही हूँ पकोड़े के बारे में। लेकिन जब मैं गई खाना खाने तो देखा पकोड़ा रखा हुआ था तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा क्या भगवान को ये भी पता चल जाता है कि मुझे पकोड़ा खाना है। तो मतलब एक कहने की बात है कि कैसे बाबा तक हमारे दिल की बात पहुंच जाती है और हमारी स्थूल आवश्यकताओं के लिए भी वो हमें संतुष्ट करते हैं। लेकिन जो भी छोटे मोटे पेपर आते हैं उन पेपर को भी हमें संतुष्ट रहते हुए पार करना है, तब हम संतुष्ट मणि कहलाएंगे। वो संतुष्ट मणियां बाबा को प्रिय होती हैं, ब्राह्मण परिवार को भी प्रिय होती हैं और स्वयं को भी प्रिय होती हैं। कई बार हम स्वयं से असंतुष्ट हो जाते हैं, दूसरों से नहीं तो अपने पुरुषार्थ से असंतुष्ट होने लगते हैं कि मेरा पुरुषार्थ जितनी तीव्र गति का होना चाहिए उतना तीव्र गति का नहीं है, जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। दिल शिकस्त होना जिसको कहते हैं, या तो फिर हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि दूसरों से तुलना करते हैं, वो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम तो नहीं कर पा रहे इतना। अब चाहे जो भी कारण बनता है, कर्म बंधन भी होते हैं कई बार और भी कोई हिसाब किताब होते हैं, तो फिर हम ईर्ष्या में आने लगते हैं तो असंतुष्ट होते हैं। तो एक तो हमें कभी भी अपने पार्ट की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी है, हर एक का पार्ट यूनिक है और मेरे भाग्य में जो है वो मुझे जरूर प्राप्त होगा। तुलना अपने आप से ही करनी है, जो भी करनी है, मेरा पुरुषार्थ मुझे उसे कहाँ तक ले जाना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मेरी गति क्या होनी चाहिए। और अगर तुलना करनी है तो सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए, अगर किसी से मुझे प्रेरणा लेनी है तो द्वेष भाव रखने के लिए नहीं, उससे मुझे क्या प्रेरणा मिलती है, उसके गुण मेरे अंदर मैं कैसे अपना सकती हूँ जिसके कारण उसकी तरक्की हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है। तो बाबा ये कहता है जरूर कि विशेषताओं की खुशबू लो, गुणों की खुशबू लो जरूर, लेकिन उन्नति के लिए। और फिर अगर हम दिल शिकस्त होते हैं तो भी हम असंतुष्ट होते हैं। तो दिल शिकस्त कभी भी ये नहीं सोचना कि ड्रामा में मेरा भाग्य ऐसा बनाया बाबा ने, भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ऐसा बना दिया, पार्ट ऐसा है, या मेरे शरीर का हिसाब किताब ही ऐसा है, या इन आत्माओं के साथ मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। प्रश्नचित्त नहीं, जितना प्रश्नचित्त रहेंगे उतना प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते, या तो प्रश्नचित्त होंगे या प्रसन्नचित्त होंगे। तो मेरा पार्ट है, मेरे पार्ट में रहते हुए ही मुझे संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। क्योंकि हमें पता है कि ये पार्ट अविनाशी है, बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। ड्रामा में जो मुझे पार्ट मिला है, हर कल्प 5000 वर्ष के बाद हमें यही पार्ट बजाना है, तो ये मेरा पार्ट है उसे समझ ले हम। लेकिन इस पार्ट में मैं संपूर्ण कैसे बन सकती हूँ उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हर पार्ट में रहते हुए बाबा ने कोई लिमिट दी क्या, प्रवृत्ति में रहने वाले संपूर्ण नहीं बन सकते, या जो कुमार कुमारी हैं वो संपूर्ण नहीं बन सकते, या जो समर्पित हो गए उनके लिए कोई लिमिटेशन है, कुछ दिया? ज्ञान तो सभी के लिए समान है, अवसर भी सभी के लिए समान है, लेकिन सिर्फ हमें वो विधियां अपनानी है जो बाबा ने हमें दी है। तो उसमें रहते हुए मैं संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करूं और मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूं मैं ही, कल्प पहले बनी थी आज भी बनूंगी और आने वाले युग में भी बनूंगी, मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। ये अपना स्वमान स्मृति में लाना है। तो जो थोड़ा बहुत अपने आप को देखकर कई बार दिल शिकस्त होते हैं, उससे हम फिर से सर्वशक्तिवान अपने को अनुभव करने लगेंगे। तो स्वयं के पुरुषार्थ से सदा संगठन के संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे बाबा से हम असंतुष्ट कैसे होते हैं, मैंने बाबा को ये सब कहा लेकिन बाबा तो मदद करता ही नहीं है, ये परिस्थिति में तो हम फंसे हुए ही हैं, ये परिस्थिति तो दूर होती ही नहीं है, कितनी कोशिश कर ली, कितना और मैं सेवा करूं, कितनी मनसा सेवा करूं, क्या करूं, कैसे करूं। जब कभी बाबा से हम इस तरह से कहेंगे, हम बाबा से दिल शिकस्त हो जाते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी शिकायत कंप्लेन करने लगते हैं हम, तो बाबा कहता है कि ये बाबा का नहीं, बाबा तो हमेशा हम हिम्मत रखेंगे तो मदद देने वाला है, लेकिन हिम्मत का कदम हमें उठाना है, ये शर्त है भगवान की, हिम्मत रखी तो हजार कदम बाबा हमें उस परिस्थिति को पार करने में मदद करेगा। लेकिन जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है, और वो हरेक को, चाहे वो महारथी क्यों ना हो, हरेक को अपने कर्मों का हिसाब किताब संगम युग पर चुकतु करना ही है। और बाबा को अगर हम सच्चे दिल से याद करेंगे, अपना योग का चार्ट हम बना देंगे, पावरफुल योग हम करेंगे, ज्वालामुखी योग जिसे बाबा कहता है, तो विकर्म विनाश होते हैं। साधारण योग से विकर्म विनाश नहीं होते, कई बार हम साधारण योग करते रहते हैं और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी ये कर्म के हिसाब किताब खत्म हो जाए, तो नहीं हो पाते हैं। एकाग्रता से जब हम पूर्ण लगन से बाबा को याद करते हैं तब हमें अवश्य सिद्धि मिलती है, इसीलिए विधि से सिद्धि बाबा कहता है। तो हम सही विधि अपनाएंगे तो जरूर हमें वो सिद्धि प्राप्त होती है, फिर हम बाबा से वो शिकायत नहीं करते कि बाबा मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो अपने योग की क्वालिटी को चेक करना है कि मेरा योग किस क्वालिटी का है। और ड्रामा तो कल्याणकारी है ही है, संगम युग में अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये भगवान के महावाक्य हैं। तो भले ही परिस्थितियां हैं लेकिन हमारे लिए किसी न किसी रूप में वो कल्याणकारी ही हैं। तो ड्रामा से भी सदा संतुष्ट, मेरा जो ड्रामा है उसमें भी हम संतुष्ट। तो जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना ही हम परिवार के भी समीप और बाबा के भी समीप और समान बनते जाते हैं। ठीक है, ओम शांति।
सविता बहन का बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया है, धन्यवाद है। हमें दो विशेष गुण जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत महत्व है वो हमने दीदी से सुने हैं।